ईयू ने बनाया, कोई दूसरी राय इसमें नहीं है। जंग अफगानिस्तान के नाम पे जहाद के मुकद्दस नाम को इस्तेमाल किया गया और रशिया के खिलाफ इन्हीं तालिबान को यूज किया गया और अब उन्हीं तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ यूज किया जा रहा है, तो कोई दूसरी राय नहीं है। और उसमें वही कुव्वतें थी जिन्होंने उनको जन्म दिया, जिन्होंने उनको पनपने का मौका दिया और उनके जरिए से बकौल यूनाइटेड स्टेट्स की सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी के सेक्रेटरी फॉरन अफेयर के सऊदी ब्रांड ऑफ इस्लाम की तरवीज के लिए उन्होंने इन तालिबान का इंतखाब किया और उसमें वो कामयाब भी रहे। वो ब्रांड ऑफ इस्लाम जिसमें गले काटना, लोगों को दरिंदगी और सरसरीत के साथ कत्ल करना, धमाके करना और बेगुनाहों के चीथड़े उड़ाना और शहरों को खंडरात में तब्दील करना उनका मजहब है, उनका दीन है, उनकी आज्ञा है।
मतलब ये बताइए, इमरान खान ने जिस तरह कहा था कि दफ्तर खुलने चाहिए, पता तो चल जाएगा ना हमारा मुलाकात वो किससे रहे, क्या इससे इतफाक करते हैं?
उनकी इस बात का मतलब यह है कि आप तालिबान दहशतगर्दों को रिकग्नाइज कर रहे हैं और उनकी हैसियत को कानूनी तौर पर तस्लीम कर रहे हैं और ये बहुत एक गलत कदम है, ये खुद एक गलत कदम है। दहशतगर्द दहशतगर्द होता है, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। दफातर उनके होते हैं जिनकी कानूनी हैसियत होती है। पाकिस्तान के अंदर जो लोग रियासत की रिट को तस्लीम किए बगैर रियासत की ताकत के साथ लड़ने के लिए मैदान में उतरते हैं, उनको आपके दफ्तर देने का मतलब ही यही है कि आप रियासत के मुकाबले में एंटी रियासत कुव्वतों की मौजूदगी को रिकग्नाइज कर रहे हैं और उनको कानूनी हैसियत दे रहे हैं। इस हवाले से इमरान खान साहब का जो बयान है वो खिलाफ हकीकत भी है और स्टेट के खिलाफ भी है।
अदालत में IGRC को बुलाया जाता है, वहाँ नहीं पेश होता, तो क्या हुकूमत के ताबे है फौज या अपनी मर्जी से नहीं करना चाहते?
बाद मामला में जहाँ पर इंटरनेशनल प्रेशर ज्यादा होता है वहाँ पर वो बजाहिर शो करती है कि वो हुकूमत के ताबे है, जैसे अभी पाकिस्तान और इन इलाकों में ऑपरेशन किया। लेकिन जिन इलाकों में बाहर का प्रेशर उस तरह का नहीं है वहां पर वो अपनी मनमानी करती है। इस मामले में भी हमने कम से कम ये देखा कि जनरल कियानी की नस्बत जनरल राहिब का एटीट्यूड नस्बतन मुख्तलिफ रहा और जनरल कियानी ने जनरल नियाजी के उस धमाके और कत्ल के हवाले से खामोशी इख्तियार कर ली और जनरल राहिल ने फौरी तौर पर एक्शन लिया और बमबारी की। ये उन दोनों की रविशों के इख्तलाफ को जाहिर करता है। लिहाजा हम ये समझते हैं कि फौज के अंदर आमादगी है ऑपरेशन के हवाले से, लेकिन रियासती जो इस वक्त हमारी सियासी हुकूमत है उनके अंदर बिल का भुगतान।
हजरत आपका मुदाकरा होने जा रहे हैं, आपका रिएक्शन प्रेस कॉन्फ्रेंस तक मौजूद रहेगा? और दूसरी बात ये, आपका जो रिएक्शन है मुदाकरात के हवाले से क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस तक मौजूद रहेगा? और दूसरा ये कि अगर मुदाकरात से अमन आ जाते डेफिनेटली गिव एंड टेक की बात होती है, अगर बिलफर्ज ऐसा हो जाता है जिन खदशात का आपने इजहार किया उसके बरक्स अमन कायम हो जाता है तो आप लोग किस पेज पर होंगे?
देखिए पहली बात तो ये है कि मुदाकरात से अमन कैसे आएगा, किन पॉइंट्स पर मुदाकरात होंगे, क्या आप उनको देंगे जिसकी बुनियाद पर वो धमाके बंद कर दें? अगर आप उनका जो बुनियादी मुतालबा है, उन्होंने कहा था कि हमारे जितने लोग जेलों में हैं उनको रिहा कर दो, यानी वो लोग जिन्होंने बेगुनाह इंसानों का खून बहाया है उनको आप रिहा कर दें, खिलाफ कानून खिलाफ आईन, क्या आप ये कदम उठाएंगे? उन्होंने कहा था कि आप वजीरिस्तान से और इन एजेंसियों से फौज को निकाल दें ताकि हमारी हुकूमत कायम रहे जिस तरह से भी हम करें, यानी दूसरे लफ्जों में आप उनको क्या स्टेट के तमाम इख्तियार देंगे उन वजीरिस्तान के और बाकी जो आपकी एजेंसियां हैं वहां पर? सवाल यह है कि आप किन शरायत पर मुदाकरात करना चाहते हैं? आप अगर ये सारी चीजें उनके इख्तियार में देंगे तो इसका मतलब यह है कि आप उनको मजीद मजबूत कर रहे हैं और उनकी मजबूती का मतलब यह है कि उनकी जो ताकत हासिल करने की इश्तहा और भूख है वो अगर वहां पर महदूद नहीं होगी, वो अगर पेशावर भी आएगी, और अब भी है और कराची भी आपके इल्म में है अब भी, जब कराची के जिम्मेदार सिक्योरिटी के अफसरों से पूछा जाता है कि यहां पर टीटीपी की सूरत हाल क्या है, तो वो कहते हैं कि एक दिन में वो पूरे कराची को मफलूज कर सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं। जहां पर ये सूरत हाल हो वहां पर आप क्या देकर क्या हासिल करना चाहते हैं और किस तरह से अमन कायम करेंगे आप?
रिएक्शन, आप लोगों का रिएक्शन प्रेस कॉन्फ्रेंस तक मौजूद रहेगा?
देखिए हमारी जो है जिम्मेदारी यह है कि हम अवामी बात करें, हम कोई दहशतगर्द या मुसल्ला तंजीम तो नहीं है, हमने अवामी जज्बात की तर्जुमानी करनी है, जो अवाम सोचती है उसको हमने हुक्मरानों तक पहुंचाना है। ये हमारे अवाम का वाज़ह मौकफ है कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में आपकी अवाम सफर करेगी आप नहीं, लिहाजा मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। अब अगर मुज़ाकरात होते हैं और नाकाम होते हैं तो फिर आप कहां पर खड़े हैं, आपकी क्या इज्जत बाकी रह जाती है? और अगर इन मुज़ाकरात के बाद भी उसी तरह से दहशतगर्दी होती रही जैसे इससे पहले भी होती रही है, इससे पहले आपने कितने मुज़ाकरात किए, इसी मुल्ला फजलुल्लाह से कितने मुज़ाकरात किए, इसके सुसर से कितने मुज़ाकरात आपने किए, क्या उन मुज़ाकरात के नतीजे में अमन कायम हुआ? नहीं हुआ। नुकसान किसका हुआ? अवाम का। आपके हुक्मरानों का तो कोई नुकसान नहीं हुआ। अवाम के पास आप जाए, चाहे स्वात में चाहे किसी और इलाके में, मुतासर इलाके में आप जाए, वहां पर पूछे, अवाम हुक्मरानों को गालियां देती है और कहती है कि भाई आप लोग इधर से आप मारते हैं और उधर से वो मारते हैं। वो किसी ने वो लतीफा भी बयान किया कि किसी ने जाके वजीरिस्तान ही में कहा कि भाई ये फौजी कैसे है, कहा ये बहुत अच्छे फौजी है, हमारे मुल्क के मुहाफिज है, खिदमत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कहा अच्छा ये तालिबान, कहा कि ये भी बहुत अच्छे हैं, ये भी इस्लाम का नाम लेते हैं और इस्लाम नाफिज करने की कोशिश करते हैं। कहा फिर, कहा सबसे बुरे हम ही हैं जिनको वो भी मारते हैं और ये भी मारते हैं। हकीकत यह है कि इसमें जो सूरत आ रहा है वो ये है। बहुत बहुत शुक्रिया।